आशाओं के दीप जला।
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
प्रिय श्रोता, सच्ची शांति को खोजने में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ तीन महान शब्दों पर विचार करें जो बाइबिल के इस वचन में चित्रित किया गया है। इस परिपेक्ष में पुनरावृत्ति प्रथम शब्द है जिस पर हम विचार करें। व्यवस्था पर विचार करें। इब्रानियों की पत्री के लेखक व्यवस्था को एक छाया के रूप में उल्लेख करते हैं, ना कि एक प्रतिमा के रूप में। आप तो भली भांति जानते हैं कि परछाई क्या होता है। जब किसी प्रतिमा पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रतिछाया बन जाता है और हमें दिखाई देने लगता है, जैसे कि सूर्य किसी पेड़ या मकान का परछाई बनाते हैं। अतः व्यवस्था को एक परछाई के रूप में माना जाता है, ना कि वास्तविक प्रतिमा। स्वयं तथ्य नहीं, परंतु किसी वस्तु की पुनरावृत्ति है। आइए अब हम मिलकर पुनरावृत्ति शब्द पर थोड़ा और विचार करें और बलिदानों के बारे में सोचें। मूसा की व्यवस्था ने कई विभिन्न बलिदानों का रूपरेखा तैयार किया, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि एवं प्रायश्चित बलिदान। ये बलिदान विभिन्न समयों में एवं विभिन्न अवसरों पर चढ़ाए जाते थे। प्रायश्चित बलिदान एक वार्षिक सेवा था और यह साल दर साल होता था, प्रतिवर्ष ठीक वैसे ही किया जाता था। मूसा की व्यवस्था में हर एक अपराध के लिए वही बलिदान था जो सावधानी पूर्वक निर्धारित रूप से किया जाता था। ये प्रक्रिया बार बार दोहराए जाते थे, फिर भी कोई निश्चयता और शांति नहीं मिलता था। क्यों? ये पाप को नहीं दूर कर सकते थे या पाप के प्रायश्चित नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि इनमें पाप को दूर करने की क्षमता होती तो बलिदानों को दोहराने का अवसर नहीं आता। अतः मेरे मित्र, प्रतिवर्ष उन्हीं बलिदानों को दोहराने के अतिरिक्त शांति पाने के और भी रास्ते हैं। स्मृति एक महत्वपूर्ण शब्द है। जब आप शांति के लिए काम कर रहे हैं, स्मृति पाप स्वीकार का एक हिस्सा है। यह बतलाने के लिए कि क्या हुआ है, कई बार बाइबिल में पाप स्वीकार की प्रार्थना इस प्रकार आरंभ होती है, हमने पाप किया है। यह पाप स्वीकार करने की प्राथमिकता है। हम इसी रीति से इस प्रार्थना को करते हैं, यह एक स्मृति है। हालांकि स्मृति था, परंतु फिर भी शुद्ध करना संभव नहीं था। यहाँ पर पवित्र बाइबिल स्पष्ट रूप से बताती है कि उन स्मृतियों का बलिदान पाप के लिए था, परंतु यह संभव नहीं था कि बैलों एवं बकरों का लहू पापों को दूर कर देता। फिर ये किस लिए था? यदि वास्तव में ये पाप को दूर नहीं कर सकते थे तो परमेश्वर ने इसराइल के लोगों से इन बलिदानों को चढ़ाने के लिए क्यों कहा? आज हम कुछ नई बातों को सीख रहे हैं। बाइबिल के अन्य वचनों में यह बहुत ही स्पष्ट और अस्पष्ट कारण है और इन्हें बताया भी गया है। हम जानते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हमारा आंतरिक हृदय बहुत ही अधिक दूषित हो जाता है, कल्पित हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यह क्या कर दिया। यह एक स्मरण था और केवल न्याय को स्थापित करता था। वह आत्मा जो पाप करता है मारा जाएगा। परंतु इन बलिदानों में जानवर का मृत्यु व्यक्ति के स्थान पर था जो उन्हें अपने पापों को याद दिलाना था। यह ईश्वरीय सुख की तैयारी थी। परमेश्वर ने बैलों और बकरों के लहू से बढ़कर चाहा और योजना बनाया। उन्होंने एक देह तैयार किया, मसीह के लिए एक देह तैयार किया, परंतु शांति पाना पाप को याद करने से बढ़कर है। इसके द्वारा वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं। शांति को पैदा नहीं किया जा सकता, शांति पैदा नहीं होता है। शांति के लिए काम करने में माफी एक आवश्यक शब्द है। इस वचन के अंतिम पदों में हम ध्यानपूर्वक जब निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि एक इच्छुक व्यक्ति जब सामने आते हैं तभी उन्हें सर्वोच्च शांति के विषय में ज्ञान होता है। सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपको सच्ची शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है आपके जीवन में आए। जब हम सातवें पद को देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार देखते हैं, देख मैं आ गया हूं, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और इसे हम आगे भी देखते हैं नौवें पद में, जहाँ इसे दोहराया गया है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। माफी का सीधा संबंध उस इच्छुक व्यक्ति के साथ है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ जो आए, जिसके लिए देह तैयार किया गया है। मैं देखता हूँ कि प्रथम बलिदान की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, लेकिन दूसरे बलिदान ने पहले बलिदान का स्थान ले लिया। जब तक पहला यहाँ था तब तक बलिदान जारी था, परंतु उसने पहले को हटा दिया ताकि दूसरा स्थापित करे। अब एक परिवर्तन है, अर्थात बलिदान चढ़ाना नहीं होगा। प्रक्रिया समाप्त हो गया, क्योंकि अब एक बलिदान है, यीशु मसीह की देह का बलिदान, एक बार और सर्वदा के लिए। मेरे मित्र, आप देख सकते हैं कि शांति पाने का अर्थ है परमेश्वर के उस कार्य को ग्रहण करना जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में किया और हमारे लिए किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम समझने का प्रयास करें। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार ना कर लें या उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर सकते, इसे दोहरा नहीं सकते, क्योंकि यह प्रतिदिन का कार्य नहीं है, यह जीवन का कार्य है। इसे हृदय से करना होता है। यदि आप इसे हृदय से करते हैं, तभी आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने पाते हैं या कर पाते हैं। तभी आपको क्षमा मिलती है, तभी आप क्षमा के प्रार्थी हो सकते हैं। अर्थात आपको तभी समझ आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार की शांति देना चाहते हैं। इन तीन शब्दों पर विचार करें, पुनरावृत्ति, स्मृति एवं क्षमा। इस बात को जब आप समझ जाएंगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कर पाएंगे और तभी आपके पापों की क्षमा हो सकती है। मेरे मित्र, मैं चाहता हूँ कि आप मिलकर मेरे साथ कहें कि हे प्रभु, हमारे पापों को आप क्षमा करें, और मेरे साथ कहें आमीन। अब मैं आज के इस अध्ययन को यहीं पर विराम देता हूँ। हमें आज्ञा दें, प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपके जीवन में बनी रहे।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09-835-983-759। पुनः एक बार 09-835-983-759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।